اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ہے کلندر شعور، اور اس کا صفحہ نمبر جو آج ہم نے شروع کرنا ہے مطالعے کا آغاز، وہ ہے 121، 121۔ ٹاپک کا نام ہے معاشرہ اور عقیدہ۔ اس پہ بات کرنے سے پہلے، جو گزشتہ روز ہم نے مطالعہ کیا تھا جس ٹاپک کا عنوان تھا قانون، اس میں حضور مرشد کریم نے یہ بات بڑی وضاحت سے بتائی کہ اصل میں ذہن کے دو جہتیں یا دو رخ ہیں۔ یہ جو خیالات آتے ہیں انہی کو وقت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کہا ہے، اور یہی خیالات جو ہیں یہ ہمیں آگے کی سمت دھکیلتے ہیں، یا ہم خود فیصلہ کر کے پلٹتے ہیں اور پیچھے آتے ہیں۔ آگے بڑھنا یقین ہے اور پیچھے ہٹنا شک ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ ذرا مائک کنٹرول کریں، یہ گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گزشتہ روز ہم نے یہ مطالعہ کیا کہ خیالات وقت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، یا خیالات کو ہی وقت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کہا گیا ہے۔ ہم ایک ٹکڑے سے یا آگے بڑھتے ہیں یا پیچھے ہٹتے ہیں۔ پیچھے ہٹنے کے عمل کو ترک بھی کہا اور شک بھی کہا۔ آگے بڑھنا اور پیچھے ہٹنا، یہ دو جہتیں ہیں۔ آگے بڑھنا یقین کہلاتا ہے، پیچھے ہٹنا شک اور بے یقینی کہلاتا ہے۔ یہ اس میں ایک بہت قیمتی بات حضور مرشد کریم نے یہ فرمائی کہ جس قدر شک کی زیادتی ہوگی اسی قدر دماغی خلیوں یعنی سیلز میں ٹوٹ پھوٹ ہوگی۔ اب اس کی مثال ذرا یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ چلتی گاڑی کو جو فارورڈ موو کر رہی ہے، اگر اسے چلتی گاڑی میں ریورس گیئر لگائیں گے تو کیا حشر ہوگا؟ وہ غراریاں ٹوٹ جائیں گی جو اس کے اندر گیئر بکس میں کام کر رہی ہیں، وہ آپس میں کولائیڈ کریں گی، ٹکرا جائیں گی۔ ان کا تصادم اتنا سویئر ہوگا کہ ساری غراریوں کے دندانے ٹوٹ جائیں گے یا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح انسانی ذہن بھی اگر آگے کی موو کر رہا ہے اور بیچ میں آپ اچانک اس کو ریورس گیئر لگا دیتے ہیں تو خلیوں میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، اور خلیوں کا یہ سارا نظام ہمارے اعصاب کو کنٹرول کرتا ہے، اور اگر اعصاب پہ خلیوں کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے مناسب تحریکات نہ ملیں تو اس میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے اور انسان اعصابی مریض بن جاتا ہے۔ اب اس کے بعد حضور نے بڑی قیمتی بات فرمائی کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ ہم فارورڈ موو کرتے ہوئے بیک سلائڈ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا بہت ہی عالی شان جواب فرمایا کہ انسان جو کچھ ہوتا ہے وہ خود کو اس کے خلاف پیش کرتا ہے، یعنی خود احتسابی کر کے اپنی کمیاں، اپنی کمزوریاں، اپنی خامیاں درست کرنے کے بجائے وہ خود کو بہتر سپوز کرتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، لہذا وہ ایک مفروضہ جال میں پھنس جاتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ انسان جو کچھ ہے خود کو اس کے خلاف پیش کرتا ہے اور ہمیشہ اپنی کمزوریوں کو چھپاتا ہے، ان کو دور نہیں کرتا۔ یہ کلندر شعور ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ یہ اپروچ اپنانی ہے کہ کمزوریوں کو چھپانے کے بجائے ان کو ریکٹیفائی کریں، ان کو دور کریں، اپنی کمزوریوں کو توانائی بنائیں، ان کو امپروو کریں، اپنی طاقت کو ابھاریں، اپنی صلاحیتوں کا کھوج لگائیں، ان کا استعمال کریں۔ یہ نہ کریں کہ جو صلاحیتیں نہیں ہیں ان کا پرچار کریں۔ یہ فرمایا نا کہ وہ ہمیشہ اپنی کمزوریوں کو چھپاتا ہے اور ان کی جگہ مفروضہ خوبیاں بیان کرتا ہے، مفروضہ جو اس نے فرض کی ہوتی ہیں کہ میرے اندر میں بہت اچھا ہوں، جو اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ گزشتہ پیراگراف کا میں نے ذرا ایک چھوٹا سا ریویو عرض کر دیا۔ اب ہم یہ جو ٹاپک ہے معاشرہ اور عقیدہ، اس کو پڑھنے لگے ہیں۔ حضور مرشد کریم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جس معاشرے میں تربیت پا کر جوان ہوتا ہے وہ معاشرہ اس کا عقیدہ بن جاتا ہے۔ غور کریں کہ یہ جو ہمارے عقائد ہیں یہ ہمیں کس نے دیے؟ یہ معاشرے نے دیے۔ اس کا ذہن اس قابل نہیں رہتا کہ وہ اس عقیدے کا تجزیہ کر سکے۔ المیہ دیکھیے کہ معاشرہ ہمیں جو عقیدہ دیتا ہے، ساتھ میں وہ یہ انتظام کرتا ہے کہ ہمارا ذہن اس قابل نہ رہے کہ وہ اس عقیدے کا تجزیہ کر سکے۔ اگر عقیدے کا تجزیہ کرے گا تو وہ حقیقت تک پہنچے گا، یہ ان کو وارا نہیں کھاتا۔ تو وہ عقیدہ یقین کا مقام حاصل کر لیتا ہے، حالانکہ وہ محض فریب ہے۔ غور کریں، معاشرے کا دیا ہوا عقیدہ جو ہمارے یقین کا مقام حاصل کر لیتا ہے وہ اصل میں محض فریب ہے۔ اب لفظ فریب کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں تو کیا بنتا ہے؟ فراڈ۔ فریب دینا کیا ہے؟ فراڈ کرنا، یعنی کہ ہم ایک غلط چیز سے، فراڈ کیا ہوتا ہے کہ جو چیز نہ ہو وہ دکھائی جائے یا بتائی جائے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ عقیدہ جو محض فریب ہے ہمارے یقین کا مقام حاصل کر لیتا ہے، اس لیے ہم فریب خوردہ لوگ ہیں۔ اور کلندر شعور ہمیں یہ تعلیم کر رہا ہے کہ اس فریب سے باہر نکلنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں عقائد کا تجزیہ کرنا آنا ضروری ہے۔ اس کی بڑی وجہ ہم بتا چکے ہیں کہ آدمی جو کچھ خود کو ظاہر کرتا ہے حقیقتاً وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ہے۔ مثلاً وہ خود کو دیکھے نا، جسم کو توجہ دیے ہوئے، جسمانی حیات کو ڈیولپ کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، ورزشیں کرتا ہے، باڈی بلڈنگ کرتا ہے، نہیں کرتا تو ذہن کو ڈیولپ نہیں کرتا۔ غور کریں، یعنی ہم خود کو بڑا طاقتور اور توانا بناتے ہیں جسمانی طور پہ، ہم ذہنی طاقت اور توانائی کی طرف کہیں متوجہ ہیں؟ جواب ہے نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس قسم کی زندگی گزارنے، یعنی یہ جو مفروضہ بنیاد پہ قائم زندگی ہے یا ہماری اپروچ جس فریب کا شکار ہے، اس فریب کا شکار ہونے کے بعد جو ہم زندگی گزارتے ہیں اس میں ہمیں بہت مشکلات پیش آتی ہیں، اور ایسی مشکلات جن کا حل اس کے پاس نہیں ہے، کیونکہ وہ مفروضہ مشکلات ہیں، مفروضہ باتیں ہیں، اس لیے اس کی مشکلات بھی مفروضہ ہیں۔ اب ایسی مشکلات کا تو ظاہر ہے کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ وہ حقیقت کی طرف رجوع نہیں کر رہا۔ تو ایسی مشکلات جس کا حل اس کے پاس نہیں ہے، اب اس سے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ قدم قدم پر اسے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا عمل تلف ہو جائے گا، تلف میں نے ضائع ہو جائے گا یا بے نتیجہ ثابت ہوگا، یعنی اس کا عمل تلف ہو جائے گا اور بے نتیجہ ثابت ہوگا۔ تو بعض اوقات یہ شک یہاں تک بڑھ جاتا ہے کہ آدمی سمجھنے لگتا ہے کہ اس کی پوری زندگی تلف ہو رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے، ضائع ہو چکی ہے۔ اور اگر تلف نہیں ہو رہی تو سخت خطرے میں ہے۔ آپ غور کریں، کیا ہماری اکثریت अक्सर ज़हनों की यही हालत नहीं है, उसकी वजह बता दी कि मुआशरे ने जो अकायद हमें दिए वो हमारे यकीन का मुकाम हासिल कर चुके हैं और वो चुके फरेब हैं, लिहाजा सारा निज़ाम जो हमारी मुश्किलात से रिलेटेड है वो भी सब फरेब है। और ये सब कुछ उन दिमागी खलियों की वजह से होता है जिनमें तेजी से टूट फूट वाक्या हो रही है। यानी कि सारा निज़ाम, अगर आप इस पैराग्राफ को, ये दो जो हमने कल और आज जो पढ़ रहे हैं, इसको तवज्जो से समझ लिया तो आपको पूरा निज़ाम समझ आ जाएगा कि दिमागी खलियों की टूट फूट को कैसे रोकना है। और अगर ये टूट फूट हमने रोक ली तो जाहिर है कि हमारी तवानाइयां ग्रो करेंगी, हमारी कमजोरियां कम होना शुरू हो जाएंगी। हजूर मुर्शिद करीम इरशाद फरमाते हैं कि जब आदमी की जिंदगी वो नहीं जिसे वो गुजार रहा है, और करें जब हमारी जिंदगी वो नहीं है जो हम गुजार रहे हैं, जिसे वो पेश कर रहा है, तो जिस पर उसका अमल है वो उस अमल से वो नताइज बरामद करना चाहता है जो उसके हस्बे दिल खा, यानी अपनी मर्जी के नताइज भी हासिल करना चाह रहा है, क्योंकि वो बुनियादी गलत है। वो जिंदगी जैसी गुजरनी चाहिए, जिन बुनियादों पे गुजरनी चाहिए, वो गुजार नहीं रहा, तो नतीजा क्या कि अपने अमल से वो नताइज हासिल करना चाहता है जो उसकी तबीयत के मुताबिक हो, जो हस्बे दिल खा हो, यानी जो उसका दिल चाहता है वैसे नताइज हासिल करना चाहता है। कानून को नहीं देखता कि कानून कैसे क्या नताइज देगा, अपनी मर्जी के नताइज हासिल करना चाहता है, तो उससे क्या होता है। लेकिन दिमागी खलियों की तेजी से टूट फूट और रद्दो बदल, ये जो हम बार बार फैसलों में रद्दो बदल करते हैं, ये खलियों में टूट फूट का सबब बनती है। पीछे आपने पढ़ा कि करोड़ों में से कोई एक आदमी फैसला करता है और फिर उस पर डट जाता है, उस पर कायम हो जाता है और फिर वो आगे और आगे और आगे ही बढ़ता है। साफ लिखा कि ये जरूरी है, इसी को इस्तकामत कहते हैं और यही सिराते मुस्तकीम, यानी मुस्तकीम का मतलब ये कि इस्तकामत से उस बात पे कायम हो जाना। ये जो रद्दो बदल और दिमागी खलियों की तेजी से टूट फूट है, वो कदम कदम पर उसके अमली रास्तों को बदलती रहती है। ये जो टूट फूट और हमारे इरादों का रद्दो बदल है, इससे हमारे अमली रास्ते बदलते रहते हैं, बार बार पटरी यानी ट्रैक्स बदलते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, हम कहीं भी नहीं पहुंच पाते, या तो वो बेनतीजा साबित होते हैं या उनसे नुकसान पहुंचते हैं, यानी या तो कोई रिजल्ट ही नहीं निकलता या लॉस हो जाता है। ये सारा किस्सा नुकसान का और फायदे का उसकी असल बता दी। वो या तो बेनतीजा साबित होते हैं या उनसे नुकसान पहुंचता है, या ऐसा शक पैदा होता है जो कदम उठाने में रुकावट बनता है, यानी शक। अब देखें ना, ये शक का एक मतलब ये कि डाउट, और एक मतलब जो रूहानी तर्जों में है वो पीछे हटना, यानी वो पीछे हटने का जज्बा गालिब आ जाता है और वो ऐसा शक पैदा होता है। देखें ना, आप चल रहे हैं सड़क पे, अगर आपके जहन में आ जाए कि आगे जमीन नरम है, कीचड़ है, तो क्या करेंगे आप? आपके जहन में ख्याल आ गया कि ये कीचड़ है, लिहाजा आप रुक जाएंगे, उसे चेक करेंगे, और अगर ये यकीन बन जाए कि नहीं भाई यहाँ वाकई कीचड़ है, तो क्या करेंगे आप? रास्ता बदल के आगे को जाएंगे, असूल है। लेकिन अगर आपने कहा नहीं यार ये सारा कीचड़ ही है, दफा करो, नहीं जाता, तो आप पीछे हटेंगे। तो ये है वो शक जो कदम उठाने में रुकावट बनता है। अब कदम उठाने में रुकावट बनने वाली सारी चीजें शक है। आपको अपनी सलाहियतों पे शक नहीं है, आपको हालात पे भरोसा नहीं है, आपको नताइज का यकीन नहीं है, ये सारी चीजें वजह बनती हैं कदम को आगे बढ़ाने से। हजूर फरमाते हैं कि आदमी के दिमाग की साख्त, ये जो हमारे दिमाग की ब्रेन की साख्त है, उसकी जो फॉर्मेशन है, वो हमारे इख्तियार में है। आदमी के दिमाग की साख्त दरअसल उसके इख्तियार में, ये है सारा इख्तियार आपका कि आप अपने जहन को कैसा बनाते हैं, इसको इख्तियार कहा गया है। साख्त से क्या मुराद है? साख्त से मुराद ये है कि दिमागी खलियों में तेजी से टूट फूट हो रही है, एतदाल में टूट फूट हो रही है, या कम टूट फूट होना, ये है आपके दिमाग की साख्त का कमाल कि टूट फूट कम हो रही है, एतदाल में हो रही है, या ज्यादा हो रही है। ये तीन दर्जे हैं। टूट फूट का बताया कि भी अगर आप फैसला करते हैं आगे बढ़ने का और फिर पीछे हटते हैं तो उससे खलियों में टूट फूट होती है। ये महज इत्तफाकिया अमर है कि दिमागी खलियों की टूट फूट कम से कम हो, यानी जब तक आप इसके लिए शौरी काबिश नहीं करेंगे, अगर किसी वजह से किसी के दिमागी खलियों की टूट फूट कम है तो अल्लाह ने करम किया, ये महज इत्तफाकिया अमर है। ये महज इत्तफाकिया अमर है कि दिमागी खलियों में टूट फूट या कम टूट फूट हो, कम से कम हो, जिसकी वजह से वो शक से महफूज रहता है। लेकिन जिस कदर शक और बेयकीनी दिमाग में होगी, जिस कदर शक और बेयकीनी दिमाग में कम होगी, उसी कदर आदमी की जिंदगी कामयाब गुजरेगी। ये है कामयाब। कामयाबी के लिए दिमागी खलियों की टूट फूट का कम से कम होना जरूरी शर्त है। इसे अंडरलाइन कर लें प्लीज, ये बहुत कीमती जुमला है। और जिस मुनासबत से शक और बेयकीनी की ज्यादती होगी, जिंदगी नाकामियों में बसर होगी। अब गौर कर लीजिए कि कितना आसान कह दिया इस बात को समझना कि अगर हम समझते हैं कि हमारी जिंदगी नाकामियों से दो चार है, तो समझ जाइए कि असल रीजन शक की वजह है। शक ज्यादा है, हमारे अंदर खलियों की टूट फूट ज्यादा है। इस शक को, इस बेयकीनी को से निजात पाने के लिए, को खत्म करने के लिए जरूरी है कि हम अपने अंदर यकीन का पैटर्न ठीक करें। अगली बात जो फरमा रहे हैं वो दिमागी खलियों की टूट फूट, चूंकि इस पे दिमागी खलियों की टूट फूट पे हम काफी पढ़ लिया हमने, अब इसके हवाले से मजीद शरा सुन लीजिए कि आदमी की बदकिस्मती ये है कि उसने अल्लाह के अता किए हुए अलूम को, अल्लाह के अता किए हुए अलूम को खुद साख्ता और गलत बुनियादों पर परखा। क्या कसूर किया, क्या बदकिस्मती है कि हम अल्लाह की बात को अपनी मर्जी से समझे बैठे हैं, खुद साख्ता सॉरी और गलत बुनियादों पर परखा, यानी बात को उस तरह से परख रहे हैं जो उसकी बुनियादी नहीं है, और उनसे इनकारी हो गया। यानी अब गौर करें कि हम मुंह से तो कहते हैं कि अल्लाह मालिक, लेकिन मालिक हम खुद बने हुए हैं हर चीज के। अल्लाह कह रहा है यौम ला तुम ले को नफ्सुन ले नफ्सिन शैन, अल्लाह कह रहा है और वाशगाफ कह रहा है कि ये अल्लाह का सिस्टम इस तरह से डिजाइंड है कि उसमें किसी नफ्स को, किसी नफ्स की किसी शय पे कोई मलकियत नहीं। तो ये अल्लाह की बात को हमने कैसे समझा हुआ है? हम तो हर चीज के मालिक बने हुए हैं, हर चीज को अपनी मलकियत में लेना चाहते हैं, यहां तक कि जी मां मलिकत ईमानुकुम का तर्जमा कर दिया, वो जो तुम्हारे दाएं हाथ की मलकियत है। तो बहरहाल ये मलकियत का तसव्वुर, हजूर मुर्शिद करीम का इरशाद है कि शरीयत में मलकियत है, कलंदरियत में मलकियत नहीं है। अब आप फैसला खुद कर लीजिए कि हम किस कदर खुद साख्ता और गलत बुनियादों पे परखते हैं अल्लाह की बात को और उससे इनकारी हो जाते हैं। ये इनकारी तो है कि हम उसकी बात सुनते हैं, पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, उसकी किरत करते हैं और मानते हरगिज नहीं, इनकारी हो जाते हैं। इनकारी क्या है कि ना मानना। हुजूर फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने हर इल्म की बुनियाद रोशनी को करार दी है। गौर करें, अल्लाह के मुताबिक, कुरान के मुताबिक अल्लाह ने हर इल्म की बुनियाद रोशनी को करार दी है। अब जरा सा रुक के यहाँ पे लफ्ज रोशनी को समझें। मैंने क्या अर्ज किया था कि रोशनी से क्या मुराद है? तसव्वुरात। हम ये बाहर बल्ब की रोशनी या चिराग की रोशनी या सूरज की रोशनी को रोशनी माने बैठे, कि बुनियाद रोशनी को करार दिया है। आदमी को चाहिए ये था कि वो ज्यादा से ज्यादा रोशनियों की किस्में और रोशनियों का तर्ज अमल मालूम करता, यानी वो इधर तवज्जो देता, लेकिन उसने कभी इस तरह तवज्जो ही नहीं की और ये चीज हमेशा पर्दे में रही। आदमी ने इस पर्दे में झांकने की कोशिश इसलिए नहीं की कि या तो उसके सामने रोशनियों का कोई पर्दा मौजूद ही नहीं था, या उसने रोशनियों के पर्दे की तरफ कभी तवज्जो ही नहीं की। यह है सारा चक्कर। अल्लाह ने हर इल्म को, रोशनी को इल्म की बुनियाद करार दिया, हर इल्म की बुनियाद रोशनी को करार दिया, यानी तसव्वुरात। अब आपकी ये फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, ये तसव्वुरात का मजमू है। इसी तरह आपकी एनाटोमी क्या है, जितनी साइंसेज हैं, फिजिकल साइंसेज हैं, आपकी मुआशियात है, आपकी अखलाकियात है, ये सब तसव्वुरात है। तो आप इनका नाम इल्म रखा हुआ आपने, लेकिन क्या हमने कभी इन तसव्वुरात की किस्में और इनकी इनके तर्ज अमल को मालूम किया कि तसव्वुरात किस तरह से अमल करते हैं? तो आंसर उन्होंने दे दिया कि ये चीज पर्दे में रही। क्यों? क्योंकि कभी हमने सोचा ही नहीं कि ऐसा कोई पर्दा है, या हमारे नजदीक कोई पर्दा मौजूद ही नहीं था। वो ये कायदे मालूम करने की तरफ मतवज्जो ही नहीं हुआ जो रोशनियों के खल्त मल्त से ताल्लुक रखते हैं। अगर आप यहाँ लफ्ज रोशनी को जाहिरी मानों में लें तो रोशनियों के खल्त मल्त, यानी कि उनके मिक्सिंग होने, मिक्स होने से, अमलगमेशन से, उनकी मिलावट से, उनके आपस में अमल और रद्द अमल के नतीजे में कैसे चीजें बनती हैं, उससे बढ़कर आगे देखें किस तरह तसव्वुरात से तसव्वुरात मिलकर एक नया तसव्वुर तख्लीक करते हैं। अगर आदमी ये तर्ज अमल इख्तियार कर ले, अगर आदमी ये तर्ज अमल इख्तियार करता तो उसके दिमागी खलियों की टूट फूट कम से कम हो सकती थी। यानी अगर वो अपने तसव्वुरात को समझने लगे, वो दूसरों के तसव्वुरात को समझने लगे, तो बताइए कि उसके अंदर यकीन बढ़ेगा या कि शक? जाहिर है यकीन बढ़ेगा। यकीन बढ़ेगा तो उसके अंदर दिमागी खलियों की टूट फूट कम हो जाएगी। वरना देखे ना कि रोशनियों के खल्त मल्त पे गौर करने से आपके दिमागी खलिये कैसे ठीक हो गए या उनकी टूट फूट कैसे कम हो गई। तो इस बात पे, इस नुक्ते पे जरा तफक्कुर कीजिएगा। इस हालत में वो ज्यादा से ज्यादा यकीन की तरफ कदम उठाता और शकूक उसे उतना परेशान न करते जितना कि अब उसे परेशान किए हुए हैं। उसकी तहरीकात में जो अमली रुकावटें वाक़या होती हैं वो कम से कम होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने रोशनियों की किस्में मालूम नहीं की, ना रोशनियों की तबीयत का हाल मालूम करने की कोशिश की। वो तो ये भी नहीं जानता कि रोशनियां भी तबीयत और माहियत रखती हैं। अब अगर आप जाहिरी रोशनी को लें तो ये बात वहां भी सादर आती है। हर तरह की रोशनी की अपनी एक तबीयत होती है, एक उसकी माहियत यानी उसकी साख्त होती है। इसकी मिसाल बड़ी सामने की है। आप नीली रोशनी में बैठते हैं आपको सुकून महसूस होता है, आप सुर्ख रोशनी में बैठते हैं आपको जोश और वलवला महसूस होता है। क्यों? क्योंकि ये इन रोशनियों की, इन रंगों की तबीयत और माहियत की वजह से है। लेकिन अगर आप इसे तसव्वुरात पे लगा लें तो तसव्वुरात की भी माहियत है, हर तसव्वुर की अपनी एक तबीयत होती है। हमें अपने तसव्वुरात को दुरुस्त करना है। उसे तो ये भी नहीं मालूम कि रोशनियां ही उसकी जिंदगी हैं और उसकी हिफाजत करती हैं, वो तो सिर्फ मट्टी के पुतले से वाकिफ है। अब मजे की बात सुन रखें, ये मट्टी का लफ्ज जो है दरअसल रंगों के मजमुए का नाम है मट्टी। मट्टी क्या है? ये रंगों का मजमुआ है। अगर आप सारे रंग मिक्स करें मादी तौर पे तो वो खाकी रंग बनेगा। खाक एक खाकी महलूल हासिल होगा अगर आप सारे रंगों को तय एक मिक्स करें तो। लेकिन अगर आप इसे रोशनियों की सतह पे सारे रंगों की रोशनियां मिक्स करें तो सफेद रोशनी हासिल होगी। ये कैसी अजीब बात है? वो तो सिर्फ मट्टी के पुतले से वाकिफ है, यानी इन रोशनियों का जो मजहर है, मट्टी का पुतला, वो असल में इन रोशनियों का मजहर है, तो आपके तसव्वुरात का मजहर है। हम तो सिर्फ उसी से वाकिफ हैं, लिहाजा वहीं पे जमे खड़े हैं और वहीं पे रुके हुए हैं। उस पुतले से, यानी कि वो मट्टी के पुतले से वाकिफ है, उस पुतले से जिसके अंदर उसकी अपनी कोई जिंदगी मौजूद नहीं है। जिंदगी क्या है? ये पुतला जो है ये जिंदगी नहीं है, इस पुतले के अंदर जिंदगी काम कर रही है। जिसको अल्लाह ने सड़ी हुई मट्टी से बनाया है, उसके अंदर अपनी जाति कोई हकीकत मौजूद नहीं है। हकीकत क्या है? हकीकत जो अल्लाह ने रूह की शक्ल में फूंकी है। हजूर मुर्शिद करीम इरशाद फरमा रहे हैं कि रोशनियों के अमल से नावाकफियत अल्लाह के इस बयान से मुनहरफ करती है, और जहां तक इनहराफ वाकया तक मुनहरफ करती है, ये लफ्ज हरफ से है। मुनहरफ होना यानी हरफ को बदल देना या उसे हटा देना या उससे दूर हट जाना, और फिर जहां तक इनहराफ वाकया होता है, जितना हम दूर हटते चले जाते हैं हकीकत से, वहां तक वहम और शक बढ़ता है, ईमान और यकीन टूट जाते हैं। माहिरे रूहानियत यकीन की तारीफ इस तरह करते हैं, यकीन वो अकीदा है जिसमें शक ना हो। अब जिन अल्फाज में हमने यकीन और शक को पढ़ा उसको यहां लगा के देखिए, यकीन वो अकीदा है। अकीदे का लुहवी मतलब का मतलब है, लफ्जी मतलब जो है वो अकद से है। अकद मैंने गिरा, यानी हमारी अफकार में जो गिरहें लगती हैं वो लगनी तो जरूरी है। यकीन भी एक अकीदा है और शक भी एक अकीदा है। अगर हमने दुरुस्त तसव्वुरात को गिरा लगाई तो ये अकीदा जो बना ये यकीन पे बेस्ड है। अगर हमने मफरूजा ख्यालात पे बेस करते हुए गिरा लगाई तो वो शक पे मबनी है। हजूर फरमाते हैं कि इरादे या यकीन की कमजोरी, गौर करें ये लफ्ज बहुत तवज्जो से नोट करें, इरादा या यकीन, गोया इरादा और यकीन एक ही माने। इरादा करना ही यकीन है और यकीन के जोर पे ही इरादे होते हैं। इरादा या यकीन की कमजोरी, ये जो हमारे इरादों में कमजोरी है असल में उसके पीछे हमारे यकीन की कमजोरी है। इरादे या यकीन की कमजोरी दरअसल शक की वजह से जन्म लेती है। शक का मतलब पीछे हटना। जब तक ख्यालात में तजबजब रहेगा, जब तक ख्यालात में तजबजब रहेगा, ये तजबजब क्या है? कदम आगे बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं, बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं, आगे जाऊं या पीछे हटूं, ये तजबजब कहलाता है। जब तक ख्यालात में तजबजब रहेगा, यकीन में कभी पुख्तगी नहीं आएगी। मज़ाहिर अपने यकीन के लिए, मज़ाहिर अपने वजूद के लिए यकीन के पाबंद है। ये जितने मज़ाहिर हैं, जो भी चीज़ ज़ाहिर में नज़र आ रही है, वो इसलिए नज़र आ रही है कि उसके पीछे यकीन काम कर रहा है। किसका यकीन? उस चीज़ के बातिन का यकीन, जो कि ज़ाहिर है उसको अल्लाह की तरफ से आता हुआ है। क्योंकि कोई ख्याल यकीन की रोशनियां हासिल करके मज़र बनता है। मैं इल्तजा करूंगा कि जुमले को न सिर्फ आप अंडरलाइन कर लें, बल्कि से याद कर इस बात को बार बार जहन में दोहराएं कि कोई ख्याल जब तक यकीन की रोशनियां हासिल करके नहीं करता, वो मज़हर नहीं बनता। दोबारा 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 इसको दोहराते रहें, यहीं पे रुक जाते हैं। ये बहुत कीमती बात हज़रत मुर्शिद करीम ने तालीम कर दी। कलंदर शऊर की बुनियाद यही है कि आपके अंदर यकीन हो। जब आपके अंदर यकीन होगा, आपके इरादे यकीन पे कायम होंगे, तो आप फॉरवर्ड मूव करेंगे। आप अपनी कमजोरियों, अपनी कोताहियों, अपनी खामियों पे काबू पा सकेंगे। न सिर्फ उन पे काबू पा सकेंगे, बल्कि अपनी सलाहियतों को डेवलप कर सकेंगे। इस बात को बहुत तवज्जो से याद रखें और ध्यान में इसकी तकरार करें कि कोई ख्याल यकीन की रोशनियां हासिल करके ही मज़हर बनता है। यहां रुक जाते हैं। जी जनाब, जी भाई, जी भाई, जी डॉक्टर साहब,
अनदेखी चीज पे यकीन जो हमारा जो बन जाता है,
नहीं सुन सका, सॉरी, दोबारा फरमाएं। मैंने कहा नहीं सुन पाया, आप दोबारा फरमा दें।
मैं कह रहा हूँ कि अनदेखी तक एक सोच है भी ऐसा।
बिल्कुल आवाज नहीं आ रही।
मैं कह रहा हूँ कि अनदेखी चीज पे जो यकीन जो,
जी जी, अनदेखी चीज पे यकीन क्या? आप क्या कहना चाह रहे हैं? अनदेखी चीज पे यकीन क्या करें? माफी चाहता हूँ। बिल्कुल
सुतून जो कायम है कि अल्लाह पे यकीन, उसके फरिश्तों पे
जी, जब पहले बात आप मानते हैं।
मैं आपको वॉइस मैसेज करता हूँ।
जी चलें, ठीक है।